गीत की पंक्तियां हमें अंतर्मुखी करने वाले, हमें चिंतन की गहराई में ले चलने वाले। क्या थी गीत की लाइनें? कि तुमने किए पूरे अरमान हमारे। सबके अरमान पूरे हो गए? किस किस के हो गए? जरा हाथ उठाएं। बाबा ने हमारे सारे अरमान पूरे कर दिए, कर रहे हैं। उसके आगे की लाइन, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। अब यहां चिंतन करना है, यहां खुद को देखना है कि उसने तो अपना सब कुछ हम पर न्यौछावर कर दिया, वो तो अपना सब कुछ हमें दे रहे हैं। इतनी ऊंची दृष्टि, इतनी ऊंची भावना, बस मैं आज ही इन्हें तैयार करके संपूर्ण मूर्ति बना दूं, संसार के आगे प्रत्यक्ष कर दूं। इतनी श्रेष्ठ भावना, कामना और सतत लगे हुए। आप एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए जो पत्थर उठा करके, एक रफ पत्थर उठा करके सड़क से ले आता है और उस पर छीनी हथौड़ी चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए। 1936 से लेकर के 22 लगातार बाबा साकार में, फिर अव्यक्त रूप में, अब और अव्यक्त होकर के हम पर परिश्रम कर रहे हैं, हम पत्थरों पर, पारस बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। कभी विचार करके देखें कि उस मूर्तिकार के जो हाथ हैं वो कैसे हो गए होंगे ना, जो लगातार लगातार छेनी हथौड़ी लेकर के हमें तराश रहा है, तराश रहा है, तराश रहा है कि मैं इन्हें बना दूं, मैं इन्हें बना दूं। हम भी अब उसके मन के जो अरमान हैं उसे पूर्ण करें। उसकी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए और उसी का एक प्रारूप अभी की एक्टिविटी में आपके सामने है। ज्यादा दूर ना जाएं, पिछले सीजन में ही बाबा ने हमसे जो आशाएं रखी, जो अरमान रखे हमसे कि बच्चे बाबा ये चाहते हैं तुम बच्चों से, 4 पेज 5 पेज की बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई। उसका एसेंस, हर मुरली का एक एक पॉइंट, ज्यादा नहीं, एक पॉइंट भी अब बाबा अक्टूबर में, अगले मास 12 अक्टूबर को फिर हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो अपने टीचर के द्वारा दिए गए होमवर्क को कंप्लीट करके उनके सामने जाता है, तब वो सिर उठा करके जाता है कि हां मैंने होमवर्क किया, मैंने होमवर्क किया, राइट। अब तटस्थ होकर, मैं पूछूंगा नहीं, तटस्थ होकर देखें, पिछले सीजन में बाबा ने जो अरमान रखे, जो होमवर्क दिया, उसमें से कितना हमें याद है? किया वो तो सेकेंड है, कितना याद है कि बाबा ने हमें क्या क्या करने को कहा और हमने उसे कितना किया ना? हम फिर भी बाबा के सामने पहुंचते हैं लेकिन बाबा कोई शिकायत नहीं करते, फिर से हमें तराशने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें अब सिंसियर होकर इस भट्टी में सोचना है कि रियली कब तक हम ऐसे चलेंगे ना। समय भी पुकार रहा है, बाबा भी पुकार रहे हैं, जैसे कहा कि साकार से अव्यक्त हुए, अव्यक्त से और अव्यक्त हो गए, और अव्यक्त से और अव्यक्त होके जब वो परमधाम की ओर चल पड़ेंगे तब तो हमारे पास कोई मार्जिन नहीं रहेगी पुरुषार्थ की। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है इस भट्टी में। हम बहुत गहराई से अपने लिए ऐसी सुंदर प्लानिंग जरूर करेंगे, इसीलिए कहा उन अरमानों को देख लें। तो बाबा ने पिछले सीजन में 12 अव्यक्त मुरलियां चलाई थीं, उन 12 ही अव्यक्त मुरलियों से क्रम से हर मुरली से एक होमवर्क आप लोगों के लिए लिया है और इसे 12 धामों के रूप में सेट किया हुआ है ताकि आपको पूरी मुरली याद रहे। 4 धाम तो हमारे हैं ही, है ना, कौन कौन से धाम? बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, राइट? तो कौन से धाम है हमारे ब्राह्मणों के? राइट, उन चारों धामों की यात्रा हम करते रहते हैं। लेकिन आज 12 धाम, 12 धामों की हम सब यात्रा करेंगे। यात्रा करते चलिएगा, आपको पूरी मुरली याद भी होती चलेगी, होमवर्क याद होता चलेगा, और इसे अब से लेकर के बाबा जब आ रहे हैं रोज एक बार इन 12 धामों की यात्रा, आपको 12 मिनट लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे, लेकिन आप आराम से योग में बैठ करके, कई बार लगता है ना कि हम योग में बैठ करके क्या करें, नवीनता चाहिए, ये 12 धाम आप योग में बैठ करके आराम से चक्कर लगाइएगा, अपनी चेकिंग भी कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो आपकी सुंदर रिवीजन होती जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा, और बाबा के सामने आ बहुत अच्छी तरह से हाँ सिर उठा करके खड़े होंगे, हाँ बाबा मैंने अपना होमवर्क किया। तो धामों की यात्रा करते हुए मन से हम मनन करते हैं, संकल्प लेते हैं, और बुद्धि में वो दृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो। योग में मन मनन करता है, बुद्धि दृश्य देखती है। तो इस यात्रा को भी हम यहां बैठे बैठे, जैसे मैं कहूं कि चलो अभी आप ताजमहल चलो, तो आप ताजमहल पहुंच जाते हो, राइट? चलो यदि आपको कहा जाए कि यहां पहुंच जाओ, अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, आप वहां पहुंच जाते हो, राइट? देख सकते हैं ना उसको, संकल्प मिला, हम वहां पहुंच जाते हैं। वैसे ही इस यात्रा को हम करेंगे, तो 12 धामों की सुंदर यात्रा हम करते हैं। ठीक है, सब तैयार है यात्रा करने को, चलें यात्रा पर, चलें। ये सुंदर तीर्थ यात्रा है हमारे लिए। बाबा की पहली अव्यक्त मुरली, चलें सभी पहुंच जाएं डायमंड हॉल में, यात्रा करेंगे सभी डायमंड हॉल में, अपना अपना स्थान ले लें। देखें मंच पर सामने अव्यक्त बाप दादा, पूरे हॉल में अपनी लाइट माइट फैलाते हुए, और देखें जैसे पूरे हॉल में जो भी बैठे हुए हैं सब बिल्कुल देही अभिमानी होकर बैठे हुए हैं, जैसे लाइट का शरीर है और सबके मस्तक पर आत्मा चमक रही है, बिल्कुल देही अभिमानी होकर सभी बैठे हैं। मैं भी बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति में बैठा हूं, भ्रिकुटी तख्त पर, और सामने दादी के तन पर महाज्योति बाबा को स्पष्ट निहार रहा हूं। जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरे डायमंड हॉल में, केवल चमकती हुई मणियां, और मैं भी भ्रिकुटी तख्त पर देही अभिमानी स्थिति में, देखें इस दृश्य को, और इस अवस्था में बैठे हुए ही बाबा के महावाक्य पहली अव्यक्त मुरली, बाबा के महावाक्य, जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो। बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, बाप दादा भी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। बाप दादा हमारी देही अभिमानी स्थिति बिल्कुल नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं, ये पहली मुरली का होमवर्क। चलिए बैठ जाए पूरी तरह से देही अभिमानी होकर, और बाबा के इस महावाक्य को गहराई से अपने अंतर्मन में समालें कि कि बाबा अब हम देही अभिमानी ही रहेंगे। ये हमारी नेचुरल नेचर रहेगी। हम देखेंगे भी आत्मा को और स्वयं भी देही अभिमानी होकर रहेंगे। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे और पूरे हॉल पर एक नजर डालें कि यहां सभी के भ्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है। डालें नजर, सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि। सभी आत्माएं हैं, दृढ़ संकल्प मुझे सबके ललाट पर चमकते हुए आत्मा को ही देखना है। जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। देखें सभी को, चाहे पुरुष का तन है, चाहे स्त्री का तन है, भाई है या बहन है, लेकिन मेरी दृष्टि भ्रिकुटी पर जाती हुई और ये देखती हुई कि सबके ललाट पर आत्मा है। जो नहीं दिख रहा है उसे देखें। पहला धाम डायमंड हॉल, होमवर्क देही अभिमानी स्थिति नेचर और नेचुरल हो जाए। चलें दूसरे धाम में। ये कौन सा धाम है? ये कौन सा धाम है? प्रकाश स्तंभ। चलें अब डायमंड हॉल से निकलकर हम सभी पहुंच गए प्रकाश स्तंभ पर। यात्रा करते रहेंगे, चित्र बनाते रहेंगे। प्रकाश स्तंभ हमारी प्यारी बड़ी दादी जी का यादगार स्तंभ, जो पवित्रता की देवी थी। दादी हमें याद दिलाते हुए बाबा के महावाक्य, जैसे सतयुग में एक राज्य होगा वैसे एक धर्म भी होगा। धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो बाबा ने कहा दूसरी अव्यक्त मुरली में, तो चेक करो सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता के नेचर नेचुरल बनी है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो जाए। पहली मुरली देही अभिमानी स्थिति नेचर और नेचुरल बनाओ, दूसरी मुरली में बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा यही तुम्हारा धर्म है, इसी तुम्हें नेचुरल और नेचर बनाना है। तो अपनी डायरी में नोट करें, चेक करें और अपने आप को परसेंटेज देंगे तटस्थ होकर ऑनेस्टली कि ये मेरा जो धर्म है धारणा है इसमें मेरी अभी कितनी परसेंटेज है। मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति संबंध संपर्क और स्वप्न, देखें, अपना चार्ट स्वयं देखें और नोट करें, मन कितना शुद्ध हुआ है, पवित्र हुआ है, या मन अभी भी भागता है देह की ओर, विकारों की ओर। वाचा शुद्ध है? कर्म में तो कहीं? दृष्टि किसी के लिए अशुद्ध तो नहीं होती? अंदर की मेरी वृत्ति बिल्कुल शुद्ध हो गई है। स्वप्न कैसे हैं? देखें और अपने आप को परसेंटेज दें, क्योंकि यही आईना है, भट्टी अर्थात आईना। देखो बाबा क्या चाहते हैं, उनका क्या अरमान है, और मैं इस अरमान को कहां तक पूर्ण कर रहा हूं। पवित्रता ही हमारी नवीनता है ब्राह्मण जीवन की, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता ही प्रत्यक्षता का आधार है, पवित्रता ही मेरे सारे कल्प की प्राप्ति का, सारे कल्प के पद का आधार है। इस धारणा पर, जो पूरे कल्प का आधार है, कितनी प्रतिशत तक मैं पहुंचा हूं, जिसको बाबा कभी कहते हैं कोई तमो प्रधान ही है, अभी कोई तमो तक पहुंचा है, कोई रजो तक पहुंचा है, कोई सतो तक पहुंचा है, मेरी पवित्रता की स्थिति क्या है। आ जाए वापस दादी के पास, पहुंच जाए प्रकाश स्तंभ पर, खड़े हो जाए परिक्रमा करके, देखें दादी वहां खड़ी है, पवित्रता की देवी हमारी दादी, और मेरे सिर पर वो पवित्रता का ताज पहना रही है। मुझे ये वरदान देते हुए संपूर्ण पवित्र भाव, संपूर्ण पवित्र भाव, संपूर्ण पवित्र भाव। अपने दोनों हाथों से अपने ताज को सेट कर लें अपने सिर पर। परफेक्ट। दादी ने ताज पहनाया और मैंने अपने सिर पर ताज धारण कर लिया। देखें, संकल्प कर लें, आज से मैं संपूर्ण पवित्रता के इस ताज को, इस जिम्मेवारी के ताज को हमेशा धारण करके रखूंगा। अब तक दृष्टि, संकल्प, बोल जैसे भी रहे, मैंने हल्का छोड़ा, चला लिया, लेकिन अब नहीं। मुझे बाबा के अरमान को पूरा करना है, दादी के अरमान को पूरा करना है, और मैं इस ताज को, 2 दिन पहले बाबा ने कहा कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। शरीर तो अलग, कर्म तो अलग, लेकिन मन से भी नहीं, कोई गला भी काट दे, मन से भी अपवित्र नहीं बनेंगे। दृष्टि मेरी अपवित्र नहीं होगी, पक्का संकल्प। यही तो बाबा की मदद का अनुभव होता है, मेरा संकल्प, मेरी दृढ़ता और बाबा की मदद। चाहे कैसे भी परीक्षा है, युगल की तरफ से परीक्षा है, लेकिन मैं दृढ़ता का एक कदम तो उठाऊं। बाबा ने कितना ठोस एक संकल्प दे दिया, सिर भी काट दे लेकिन अपवित्र नहीं बनेगी। इतनी महत्ता बाबा इस पवित्रता को देते हैं। मैं इसके साथ कोई समझौता मन में भी नहीं करूंगा, ये मेरी दृढ़ता हो। ठीक है, तो ताज याद रहेगा। तो दूसरा हमारा धाम प्रकाश स्तंभ, हमारा संकल्प संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने चेक करने को कहा, तो हम चेक करते रहेंगे। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, मेरी संपूर्ण शुद्ध और सात्विक हो। चले तीसरे धाम की ओर, पवित्रता का ताज धारण करके। ये कौन सा धाम है हमारा? कौन सा धाम है? थोड़ा जोर से बोले, शक्ति स्तंभ। राइट, किसका यादगार? हमारी प्यारी दादी जानकी जी का यादगार। तीसरी मुरली बाबा की। दादी हमेशा खुश रहते थे ना, सबको खुशी बांटते थे। कहती थी सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा बैठा है क्यों चिंता करते हो, खुश रहो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, बाबा मिल गया फिर और किस बात का गम है। दादी हमेशा हम सबको मैं कौन मेरा कौन प्रेरित करती थी ना खुश रहने को। तो तीसरी बाबा की मुरली, कोई भी बात आए लेकिन बातें हमारी खुशियों के खजाने को नहीं ले जाए। खुशी, शक्ति स्तंभ पर खुशी, जैसे दादी हमें खुश रहने के लिए प्रेरित करती हुई, और बाबा के महावाक्य, कोई भी बात आए लेकिन बातें हमारी खुशियों के खजाने को नहीं ले जाएं। अपने दिल में प्रॉमिस करो, बाबा ने कहा अपने दिल में प्रॉमिस करो, सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे, क्योंकि खुशी जैसी बोले, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो दिल से बाबा ने कहा प्रॉमिस करो, ऐसे प्रॉमिस नहीं, बाहर बाहर से प्रॉमिस नहीं, दिल से प्रॉमिस करो खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। और भगवान के बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो और कौन खुश रहेगा। बातें आएंगी जाएंगी, हमारी दादियों के सामने कितनी बातें आई, बाबा के सामने कितनी बातें आई, मम्मा के सामने कितनी बातें आई। हाँ, मम्मा का एक फोटो आपने देखा होगा, अभी जून में बहुत चला वो। मम्मा को पता है कि कैंसर है, मम्मा को पता है कि अब थोड़े दिनों के बाद शरीर छोड़ना है, लेकिन चेहरे में कितनी खुशी, कितना हल्कापन। देखा ना सबने, देखा ना मम्मा का ये फोटो, देखा नहीं? देखा, दिखाएंगे आपको। ये पता है कि देह छोड़ना है, फिर भी खुशी खुशी जाएंगे, गम नहीं, बातें आएंगी और जाएंगी। तो शक्ति स्तंभ पर क्या करेंगे? प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस करेंगे कि हम खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी देंगे। कौन कौन ये प्रॉमिस दिल से कर सकता है, जरा हाथ उठाएं, दिल से, दिल से। बहुत सुंदर, फिर से एक बार खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, अपने दिल पर हाथ रखें और बाबा से प्रॉमिस करें। दिल पर हाथ रखे कि बाबा आपने कहा है दिल से प्रॉमिस करने को, तो हम दिल से प्रॉमिस करते हैं, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम हमेशा बोलें, हम हमेशा। और दूसरा कार्य बाबा ने दिया, खुश करेंगे। ठीक है, हाथ नीचे करें और एक एक पेयर बना लें, जोड़ी बना ले, आमने सामने हो जाए। चले, बाबा ने कहा खुश रहेंगे, तो हमने प्रॉमिस कर ली हम खुश रहेंगे बाबा, लेकिन अब बाबा ने कहा खुश करेंगे, तो अब अपने साथी को आपको खुश करना है। चलिए यहीं से प्रैक्टिकल करेंगे ना, आप कैसे खुश करेंगे अपने साथी को जो आपके साथ रहते हैं, अब ये आपके ऊपर है, हम देखते हैं आप क्या करेंगे। चलो खुश करो एक दूसरे को। अच्छा, बैठे बैठे ही चलिए इस एक्टिविटी को, हाँ, खुश खुश करें अपने साथी को। कैसे खुशी देंगे? दीजिए दीजिए, अभी करना पड़ेगा ना, होमवर्क है ना, तो होमवर्क अभी करेंगे तभी तो उधर जाके भी करेंगे। हाँ, हम कैसे खुश करेंगे? अच्छा, आप में से कोई एक दो बताएं कैसे खुशी खुश करेंगे सामने वाले को, भाइयों। हाँ जी, आप बहुत अच्छे हैं, वाह। तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वेरी गुड। और शुभ भावना देकर, शुभकामना देकर, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ अपनी शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे बढ़ें, बहुत उन्नति करें, ये भी शुभकामना देके खुशी दे सकते हैं, वेरी गुड। और बहनें कैसे खुशी देंगे? थोड़ा जोर से बोलें, क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, उनको गले से लगा लेंगे, वेरी गुड, प्यार करेंगे। आप बहुत महान आत्मा है, आपको बाबा ने चुना, वेरी गुड। आपको ये तरीके निकालने हैं, ठीक है, कि हम कैसे दूसरों को खुशी प्रदान करें, मुस्कान के साथ भी, अपने मन के साथ शुभकामनाओं के साथ, वाणी को भी अच्छा रखते हुए हमें सबको खुशी देनी। अच्छा, यदि सामने वाला आपको खुशी नहीं देता, आपको परेशान करता है, आपके लिए भला बुरा बोलता है, फिर क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक तो हमने अपने मन को समझाया, लेकिन ऐसी आत्मा को भी खुशी दे सकते हैं? कौन कौन ऐसी आत्मा को खुशी दे सकता है, जरा हाथ उठाएं। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये चैलेंज होता है कि सामने वाला गाली दे रहा है और हम उन पर फूल चढ़ाएं, सामने वाला हमारे लिए भला बुरा बोल रहा है, मेरे लिए गड्ढे खोद रहा है, और उसके बाद भी मैं उसे खुशी प्रदान करूं, ये चैलेंज है। इसीलिए बाबा ने कहा, दिल से प्रॉमिस करो, खुश रहेंगे, और कोई कैसा भी है, काला कोयला भी क्यों ना हो, बाबा ने कहा, यदि तुम उसे हीरा देखोगे, हीरे की तरह व्यवहार करोगे, अच्छा श्रेष्ठ बोल उसके लिए रखोगे, भावना रखोगे, आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो यही कार्य हमें करना है, क्योंकि हम सब इष्ट देव देवी है ना। चले चौथे अपने धाम में। ये चौथा धाम कौन सा है? अव्यक्त लोक। अव्यक्त लोक, जहां अव्यक्त बाप दादा और बाबा के रथ की स्मृति हमें आ जाती है। चौथी अव्यक्त मुरली, बाबा ने कहा, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना, प्यार का रिटर्न है, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। बाबा ने कहा, प्यार का रिटर्न है खुद को टर्न करना, खुद को बदलना। ऐसा नहीं कि मैं कहता रहूं बाबा आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, और बाबा जो कह रहे हैं वो मैं कर ही नहीं रहा हूं, इसको प्यार नहीं कहेंगे। बाबा की परिभाषा है प्यार का रिटर्न टर्न होना। कई बार कहते हैं ना बच्चे, बाबा आपसे बहुत प्यार है, आप कहो तो हम अपनी जान दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारी जान लेके बाबा क्या करेंगे, यदि प्यार ही है तो टर्न हो जाओ। तो अब क्या करेंगे, कम से कम अपनी एक कमी, एक कमजोरी इस चौथे धाम में, अपनी डायरी में नोट करें, जो कमी कमजोरी मुझे टर्न करनी है, नोट करें उसे, भले आप अपनी डायरी के लास्ट पेज पे लिख लो, उसे मुझे बाबा को समर्पित करके जाना है, यहां से इस भट्टी से मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं अपनी इस कमी को, इस अवगुण को, इस कमजोरी को, जो लंबे समय से चली आ रही है, मुझे भी पता है, दूसरों को भी पता है, मुझे इसे टर्न करना है। चाहे वो अपवित्रता की है, चाहे परचिंतन की है, परदर्शन की है, नाखुश रहने की है, अमृत वेले से रात तक की अपनी दिनचर्या में ऊपर नीचे होने की है, कभी अमृत वेले मिस कर दिया, कभी मुरली मिस कर दिया, कभी किसी से लड़ झगड़ लिया, वॉट एवर, जो बाबा को प्रिय नहीं है, जो श्रीमत अनुसार नहीं है, जो मेरी खामी है, मुझे टर्न करना है। नोट करें सभी अपनी डायरी में, नोट करें, मुझे इसे टर्न करना है, मुझे इसे बाबा को अर्पित करके जाना है। प्रतिज्ञा पूर्वक, भगवान ने मुझे इतने वर्षों तक पालना दी है, 69 से लेकर 2017 तक अव्यक्त पालना, 16-16 घंटे बैठकर, 12-12 घंटे बैठकर, 10-10 घंटे बैठकर, 4-4 घंटे मुरली सुना करके, प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेर के, भगवान ने कितना कुछ दिया है मुझे, उनके इस प्यार के रिटर्न में मैं अपनी एक छोटी सी कमी को टर्न नहीं कर पा रहा हूं, क्या इसको प्यार कहते हैं? प्यार में तो आदमी अपनी जान दे देता है, पहाड़ से कूद पड़ता है, सागर में कूद पड़ता है कि मुझे इससे प्यार है, बस प्यार में मैं अपनी जान दे रहा हूं। भगवान जान नहीं मांग रहे हैं, हमारी एक कमी मांग रहे हैं, एक अवगुण मांग रहे हैं मेरी उन्नति के लिए। नोट किया सभी ने? अपनी डायरी के लास्ट पेज पे नोट करके रख लें और इसे कल बाबा को अर्पित करेंगे। इस पर गहराई से सोचना, क्या ये मेरे काम की है? क्यों मैंने इसको सहेज के रखा हुआ है? क्यों मैं इसकी पालना कर रहा हूं? क्यों मैं चला रहा हूं कि चलता है ना, छोड़ दूंगा एक साल के बाद, छोड़ दूंगा दो साल के बाद, छोड़ दूंगा अगले मास। कब से आप सोच रहे हो? सोचो, जब से ज्ञान में चल रहे हैं तब से लेके सोच ही रहे हैं, छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे ना। छूटा? जब तक प्रॉमिस नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, बाबा के घर आया हूं, बाबा की अरमान को मुझे पूरा करना है, उसे देके जाना। देंगे ना, देंगे ना? अपना हाथ उठाएं जो देंगे, टर्न करेंगे। बाबा देख रहे हैं ना, बाबा वतन से हमें देख रहे हैं। थैंक यू। मैंने कहा था इस हॉल में जब भी आए बाबा जैसे बैठे हुए हैं ये महसूस करें, मेरे प्रेजेंस को देख रहे हैं, मेरे हाथ को देख रहे हैं, मेरे अंदर की भावना को देख रहे हैं, मेरी लगन को देख रहे हैं, और वो हजार गुना मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी यदि ठान लिया कि मुझे बदलना है, बाबा की हजार गुना मदद मिलेगी, आप बदल जाएंगे, आप चेंज हो जाएंगे, वो आदत छूट जाएगी। और यदि अभी भी हल्के रहे तो फिर वो आदत बढ़ती जाएगी। इसीलिए दिल से अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें इस अवगुण को छोड़ना है। ठीक है, फोर्थ हमारा धाम अव्यक्त लोक, जहां का शब्द है टर्न इन रिटर्न। टर्न इन रिटर्न, रिटर्न में मुझे खुद को टर्न करना है। चलें पांचवे धाम में पहुंच जाएं। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है जहां आप बैठे हुए हैं? ये भी हमारा धाम है। कहा ना, बाबा यहां आए हुए हैं, तो बाबा जहां आए हमारे लिए धाम। तो ये हार्मनी हॉल, ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर को बाबा का वरदान। यहां आएंगी आत्माएं साधारण स्थिति में और बंधन मुक्त फरिश्ते स्थिति का अनुभव करेंगी। तो बाबा का महावाक्य, पांचवी अव्यक्त मुरली, अब तुम्हें ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। और बाबा ने कहा हाय हाय करना अर्थात बंधन, और फ्लाई करना अर्थात बंधन मुक्त। तो ज्ञान सरोवर को अपने सामने ले आएं और देखें, एक चित्र बनाएं, ज्ञान सरोवर में मैं बंधन मुक्त फरिश्ता बनकर विचरण कर रहा हूं। हॉल में भी बैठा हूं, ज्ञान सरोवर में बंधन मुक्त फरिश्ता बनकर विचरण कर रहा हूं। बाबा ने कहा बच्चे बंधन मुक्त बनो। हाय हाय करना मतलब बंधन, तो मैं हाय हाय नहीं करूंगा, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। अब मुझे उड़ना है, अब मुझे उड़ना है, तो मैं फरिश्ता। देख लें अपने आप को, विजन क्लियर, पांचवी मुरली, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता, बंधन मुक्त फरिश्ता ज्ञान सरोवर में विचरण करता हुआ। कल भी आपको ड्रेस मिल गई है, फरिश्ते की चमकीली ड्रेस, वो ड्रेस भी पहनकर जब भी ज्ञान सरोवर को इमर्ज करेंगे अपने आप को फरिश्ते के रूप में देखेंगे, बंधन मुक्त, डबल लाइट। चलें हमारा छठवां धाम, छठवां धाम, पीछे वाले बोले छठवां धाम कौन सा है? ओम शांति भवन, जहां बाबा वर्षों वर्ष आकर के बाबा ने मुरली चलाई। चलें सभी पहुंच जाएं ओम शांति भवन में, और ओम शांति भवन के अंदर देखें बाबा हॉल में मंच पर बैठे हुए हैं, और बाबा के गले में एक बहुत सुंदर गुलाब के फूल की माला है, और हर एक गुलाब पर सुंदर स्वमान लिखे हुए हैं। ओम शांति भवन के साथ स्वमान शब्द याद रखेंगे, स्वमान। और देखें बाबा मंच पर, बाबा के गले में सुंदर गुलाब के फूल की माला, हरी गुलाब पर सुंदर सुंदर स्वमान लिखे हुए हैं। बाबा प्यार से मुझे मंच पर बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ बच्चे। मैं मंच पर बाबा के सामने पहुंच जाता हूं, देखो बाबा के सामने मैं मंच पर, और बाबा अपने गले से उस फूल की माला को निकालकर, स्वमान की माला को निकालकर मेरे गले में पहना रहे हैं, मेरे गले में भगवान मुझे स्वमान की माला पहना रहे हैं, प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा की छठवीं मुरली का होमवर्क महावाक्य, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो, मैं कौन, इस स्वमान की अथॉरिटी में मैं कौन, मैं कौन। सारे दिन जब हम मैं शब्द यूज कर रहे हैं तो मैं के साथ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कौन है हम, कौन है हम, आत्मा है, आत्मा से आगे कौन है हम, कौन सी आत्मा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज हूं, मैं पूज्य हूं, मैं भगवान का राइट हैंड हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं जानता हूं। प्रधानमंत्री ये भूल जाए, चीफ मिनिस्टर ये भूल जाए कि वो कौन है, तो क्या अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से कर पाएंगे, अपने अधिकारों को यूज कर पाएंगे, नहीं। यदि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, कितनी ऊंची आत्मा हूं, हाईएस्ट हूं, होलीएस्ट हूं, रिचेस्ट हूं, भगवान की गोद का बच्चा हूं, ईश्वरीय संतान हूं, इतनी ऊंची अपनी पहचान और स्वमान को यदि मैं भूला हुआ हूं, तो क्या नशे में रह पाऊंगा, क्या अपने कर्तव्यों को कर पाऊंगा जो सारे विश्व के लिए मुझे करना है, नहीं। इसीलिए छठवें धाम में स्वमान की माला भगवान ने मुझे पहनाई है, और ये कहा स्वमान की जो लिस्ट बाबा ने दी है अपनी बुद्धि में रखो, मैं कौन वो याद करते रहो। ठीक है, चलिए फिर से थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। चलिए, बाबा ने हमारे गले में माला पहनाई स्वमान की, अब हम एक दूसरे को स्वमान की माला पहनाएंगे। फिर से एक दूसरे के आमने सामने पेयर बना लें, पेयर बना लें। अच्छा, अब एक दूसरे को जो स्वमान बाबा ने हमें दिया है अब तक, एक दूसरे को स्वमान की माला पहनाएंगे, अर्थात स्वमान याद दिलाएंगे कि आप कौन हैं। एक करे, फिर दूसरा बोले, फिर दूसरा बोले, फिर ऐसे। चलिए, स्वमान की माला पहनाएंगे एक दूसरे को, लंबी माला पहनाएंगे, लंबी माला। दो चार स्वमान केवल नहीं, बाबा ने कितने सारे स्वमान दिए, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। चलो जामवंत बनके याद दिलाओ सामने वाले को कि वो कौन है, सामने वाला जो साधारण नहीं है, जो आपके सामने खड़ा है वो बहुत महान है, बहुत ऊंच है, भले वो भूला हुआ है, आपका काम है उसे याद दिलाना। चलिए, प्यार से एक दूसरे को फिर से वैसी माला पहना करके प्यार से गले मिलेंगे, रूहानी मिलन करेंगे, और एक दूसरे को धन्यवाद देकर के, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूं, ये धन्यवाद देकर के फिर अपने स्थान पर बैठेंगे, है ना। धन्यवाद देंगे ना, उन्होंने याद दिलाया आपको कि आप कितने महान हो, कितने ऊंच हो, कितने श्रेष्ठ हो, राइट। देखो सबके चेहरे खिले हुए हैं ना, ये है खुशी देना, है ना, राइट। ऐसे हम खुशी देंगे एक दूसरे को स्वमान देकर। सबके गले में माला आ गई, किस किस के गले में माला आई, हाथ उठाए, वाह सबके गले में ना, बहुत अच्छा लग रहा था, सब एक दूसरे को ऐसे एक सूक्ष्म माला पहना रहे थे, हाँ, तो सबके गले में बाबा ने माला। तो छठवां हमारा धाम स्वमान का धाम, ओम शांति भवन, जहां हम स्वमान की स्मृति में रहेंगे। ये बाबा ने प्रेरणा दी, मैं कौन याद रखो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यही जीवन का आधार। बाबा ने कहा है तुम ब्राह्मणों के लिए स्मृति ही जीवन है और विस्मृति ही मृत्यु है। यदि तुम्हें स्मृति है कि तुम कौन हो तो जीवित हो, और यदि विस्मृत हो जाते हो कि तुम कौन हो तो जैसे मृत हो, एक साधारण मनुष्य की तरह हम हो जाते हैं। इसीलिए सारे दिन याद रहे मैं कौन। सातवां हमारा धाम कौन सी जगह है? हिस्ट्री हॉल। पहुंच जाएं हिस्ट्री हॉल में, देखें बाबा मम्मा दोनों ही हिस्ट्री हॉल में हमारा स्वागत कर रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा मम्मा की संदली सामने है, हम हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाएं और हिस्ट्री हॉल में बाबा के महावाक्य याद करें। बाबा ने कहा बाप दादा यही होमवर्क देना चाहते हैं कि बच्चे जो संकल्प करना चाहो वही चले। होमवर्क बाबा ये दे रहे हैं सातवीं मुरली में, जो तुम संकल्प करना चाहो वही चले। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूं सोचना और वो चल रहा है, ये नहीं। इसलिए बाबा ने कहा बाप दादा अपने दिल की यही चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना है। मन जीत जगत जीत, मैं जो सोचना चाहूं वही सोचूं। ऐसा नहीं कोई विचार आया और मुझे बहा के ले गया, किसी ने कुछ कहा वो संकल्प बहा के ले गया, नहीं। ये मन जीत नहीं है। और यदि मैं मन जीत नहीं हूं, अपने संकल्पों के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं जगत जीत नहीं बन सकता। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो जग को कैसे कंट्रोल करेगा। तो ये हमारी ट्रेनिंग है। तो हमें क्या करना है? मन जीत जगत जीत। अब देख लें अपने आप को, देख लें सारे दिन में मन मुझे कितना चलाता है और मैं मन को कितना चलाता हूं। मन को मैं जो विचार देता हूं, इवन योग में बैठकर जो मन को विचार देता हूं कि मन चल परम धाम, चल सूक्ष्म वतन, चल स्वर्ग, चल बाबा के सामने बैठ, मन मेरी कितनी मानता है। या मन सेंटर पहुंच जाता है, घर पहुंच जाता है, डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है, कमरे में पहुंच जाता है, पास्ट में पहुंच जाता है, फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां चाहता हूं वहां नहीं जा रहा है और जहां नहीं चाहता हूं वहां जा रहा है। मुझे मन जीत बनना है, मेरा मन है, मुझे चलाना है, मैं राजा हूं। सेवेंथ बाबा की मुरली हिस्ट्री हॉल, संकल्प कर ले बाबा मम्मा के सामने, जैसे मेरे बाबा मेरे मम्मा मन जीत जगत जीत हैं। उन्होंने मन को जीता इसलिए जगत जीत बन गए। मुझे भी फॉलो फादर मदर करना है, मुझे भी अपने मन को पूरी तरह जीतना है और जगत जीत बन। फॉलो फादर मदर। चलिए अगला हमारा धाम बाबा की कुटिया। आठवां हमारा धाम बाबा की कुटिया। देखें जैसे कुटिया के बाहर बाबा ड्रिल करा रहे हैं, फिजिकल ड्रिल बच्चों को, और फिजिकल ड्रिल कराने के बाद बाबा कुटिया में ले आते हैं बच्चों को और मन की ड्रिल करा रहे हैं। मन की ड्रिल आठवीं मुरली में बाबा ने कहा, कुटिया को ध्यान में रखिएगा, कुटिया में हमें ड्रिल करनी है। आठवीं मुरली में बाबा ने कहा अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न, जानते हो ना, ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने तीन स्वरूप की स्मृति की ड्रिल, ब्राह्मण फरिश्ता और देवता, इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र है मन मना भव। तो इन ड्रिल के द्वारा बाबा ने कहा बीच बीच में जो भिन्न भिन्न ड्रिल मिले हैं उन ड्रिल में अपने मन को बिजी रखो, मन मना भव रखो। ये है आठवीं मुरली का होमवर्क। हम ड्रिल बीच बीच में करते रहते हैं, अपने मन को इसमें बिजी रखते हैं। चलें ड्रिल करेंगे जो हमने कहा मैं और मेरा, या 3S के ड्रिल. 3S अलग अलग हमारी ड्रिल्स हैं, उसमें 3S की एक ड्रिल है. फर्स्ट S सोल, सेकेंड S सुप्रीम सोल, थर्ड S सकाश. ठीक है, एक कहा सोल स्वरूप पे, आत्मा पे एकाग्र हो गए. सेकेंड दो कहा सुप्रीम सोल पर एकाग्र हो गए. तीन कहा विश्व को सकाश देने लगे. ठीक है, चले एक मिनट इस ड्रिल को करते हैं. एक आत्मा, फर्स्ट एस मैं आत्मा, भ्रिकुटी तख्त पैस. दो सुप्रीम सोल, परम धाम में बाबा के स्वरूप पैस एकाग्र. तीन विश्व ग्लोब के ऊपर बाबा से किरणें लेते हुए विश्व को सकाश. फिर से एक आत्मा, फर्स्ट इज सोल, मैं आत्मा, भ्रिकुटी तख्त पैर. सेकेंड इज सुप्रीम सोल, परम धाम में बाबा के पास. थर्ड इज विश्व ग्लोब के ऊपर सकाश. ऐसे हमें ड्रिल करने हैं, कभी 3S, कभी पांचों स्वरूप, कभी जो बाबा ने कहा ब्राह्मण फरिश्ता देवता, कभी तीनों लोग. बाबा ने कहा बीच बीच में जो ये भिन्न भिन्न ड्रिल हैं, मन को बिजी रखो, नहीं तो मन व्यर्थ की ओर भागेगा. आठवें मुरली का ये सुंदर होमवर्क. चलें अपने नौवें धाम में. नौवा धाम बाबा का कमरा, शब्द तीव्र पुरुषार्थ. पहुंच जाएं बाबा के कमरे में. देखें जैसे बाबा बैठे हैं और बाबा के हाथ में एक रॉकेट है जिस पे लिखा हुआ है तीव्र पुरुषार्थ, और बाबा वो तीव्र पुरुषार्थ की रॉकेट मुझे दे रहे हैं. ये कहते हुए बाबा के महावाक्य, नौवीं अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, होमवर्क दिया, अपना अरमान हमारे सम्मुख रखा कि बाप दादा अभी हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखना चाहते हैं. केवल पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी. तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात अब इसे होमवर्क है ये भी आपके लिए, इसे आप कमरे में जाके निकालिएगा। तिव्र पुरुषार्थी अर्थात बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात अभी अभी, कभी कभी नहीं, जो करना है अभी, जो बाबा ने आज मुरली में कहा कि कल का कोई भरोसा नहीं है, जो करना है अभी कर लो। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात अभी अभी। मम्मा कहा करते थे पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती ही ना करे। अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थी हो जाना है जो हमें गलती करके सुधारने वाली बात ना रहे लेकिन नेचुरल एक अटेंशन रहे। तो तीव्र पुरुषार्थी का क्या भाव है उस पर भी सुंदर चिंतन कीजिएगा। चलें, दसवां हमारा धाम शांति। कौन सी जगह है, एक बार जोर से बोलें, शांति स्तंभ। शांति स्तंभ का शब्द याद रखें, फुल स्टॉप। देखें, शांति स्तंभ में पहुंच जाएं, बाबा वहां पहले खेला करते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे। तो जैसे शांति स्तंभ पर बाबा खेल रहे हैं, कौन सा खेल, स्टॉप स्टॉप, जैसे होता है ना हम लोग स्टेच्यू खेलते थे ना बचपन में, स्टेच्यू, तो वो सामने वाला स्टेच्यू हो जाता था। बाबा भी यहां स्टॉप स्टॉप गेम हमारे साथ खेल रहे हैं कि बाबा ने स्टॉप कहा और हम स्टॉप हो जाएं। दसवीं बाबा की मुरली जिसमें होमवर्क बाबा ने दिया सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का, बार बार अभ्यास करो। सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास, क्योंकि सेकेंड में कुछ से कुछ हो जाता है, सारा खेल बदल जाता है। मान लो अभी बुलावा आ गया, अभी बाबा बोले कि बच्चे चलो, तो क्या मैं सब चीजों में फुल स्टॉप लगाकर चलने को तैयार हूं? चेक करो, अभी भी भट्ठी में आप बीच बीच में देखना, फुल स्टॉप लगाकर, कमरे में हो, गार्डन में बैठे हो, अपने साथ बैठे हो, हॉल में बैठे हो, मैं फुल स्टॉप लगाता हूं तो क्या फुल स्टॉप लग जाता है और कुछ याद नहीं, बस मैं और बाबा, कोई गृहस्थी नहीं, कोई सांसारिक बात नहीं, कोई बंधन नहीं, क्या मेरी ऐसी स्थिति है? तब तो अंतमति सो गति होगी, अन्यथा बाबा ने कहा स्टॉप और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि बाबा अभी कैसे, अभी तो ये काम बचा है, ये काम बचा है, बच्चों का ये है, इनको मैंने नहीं बोला है ऐसा। अभी बाबा बोले कि चलो बच्चे फुल स्टॉप, तो चलने को तैयार हैं? चलने को तैयार हैं? आप सब तो तैयार हैं ना, रेडी हैं, राइट, एवर रेडी। अंदर से चेक, कोई भी सूक्ष्म बंधन मुझे बांध तो नहीं रहा है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे वैभव है, मेरा पास्ट का कोई स्वभाव, संस्कार, आदत है, बांधेगा तो नहीं। चल पड़ो खुशी खुशी मैं बाबा के साथ फुल स्टॉप। इसलिए बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप, एक मिनट में नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। अभी से अभ्यास करेंगे तो अंत में जब फुल स्टॉप लगाएंगे वो स्टॉप लगेगा, और यदि अभी से अभ्यास नहीं होगा तो उस समय लगेगा नहीं। जिसको प्रैक्टिस होती है ना वही कर पाता है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। इसलिए बाबा दसवीं मुरली में हमें होमवर्क दे रहे हैं, बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। ग्यारहवां हमारा धाम कौन सा है? ग्यारहवां धाम बाबा का सेंटर है। बाबा का सेंटर जहां रोज हम मुरली सुनते हैं, बाबा की उपस्थिति वहां पे भी है। बाबा के हर सेंटर तीर्थ हैं, धाम हैं, जहां बाबा सूक्ष्म में आकर के अपने बच्चों को देखते हैं, मिलते हैं। तो रोज के महावाक्य बाबा की ग्यारहवीं मुरली का होमवर्क है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वो होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलधे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है वो रोज की मुरली पढ़ लो। तो रोज संकल्प करेंगे, रोज हमें इस ग्यारहवें धाम में अर्थात बाबा के घर में जाकर मुरली सुननी है। व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ लेना है, व्हाट्सएप पे नहीं सुन लेना है, बाबा के घर जाकर मुझे मुरली सुननी है। क्योंकि जब आप बाबा के घर में सेंटर पर जाकर के व्यवस्थित रूप से जैसा नियम है वैसे आप मुरली सुनते हैं, आप देखो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। वो मुरली आपके हृदय में उतरती है, वो मुरली एक परिवर्तन लाती है। होता है या नहीं होता? क्योंकि बाबा के घर में मुरली सुनना, निमित्त आत्माओं से सुनना, सुबह सुबह सुनना, बाबा की उपस्थिति का आप अनुभव कर सकते हैं कि बाबा हैं, उस उपस्थिति का एहसास होता है। इसीलिए कितने भी बिजी हो, व्यस्तता जीवन भर लगी रहेगी, लेकिन मुझे बाबा के घर में मुरली जरूर सुनने के लिए जाना है। चलो किसी कारण से सुबह नहीं जा पाए, शाम को जाऊं, लेकिन जाऊं जरूर सेंटर पर, यह मुझे पक्का करना भी है और कराना भी है। तो ग्यारहवां धाम बाबा का सेंटर। कौन कौन रोज सेंटर पर ही जाकर मुरली सुनते हैं, जरा हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। अच्छा, जो आज से ये संकल्प करते हैं कि अब रोज सेंटर पे ही जाके मुरली सुननी है, वो जरा हाथ उठाएं। हाथ उठाओ, बाबा देख रहे हैं, हाथ उठाओ। संकल्प करेंगे, सिद्धि मिलेगी। बहुत सुंदर। आपको लाभ है, आपकी उन्नति है, आपका कल्याण है। एक होता है प्राइवेट पढ़ना और एक होता है रेगुलर पढ़ना। घर में बैठकर मुरली सुन लेना, पढ़ लेना, और सेंटर पर आकर पढ़ना, इसमें वही डिफरेंस है जो रेगुलर स्कूल जाकर पढ़ने में है और प्राइवेट पढ़ने में है। हमें बाबा के घर जाकर पढ़ना है इस ग्यारहवें धाम में, ठीक है? तो रोज की मुरली से एक बाबा के महावाक्य को होमवर्क के तौर पे हम ले सकते हैं। जैसे बाबा ने आज एक सुंदर सा होमवर्क दिया, आप सबने भी लिया होगा, कि भले ही अपने लौकिक बच्चों की पालना करो, लेकिन इस बच्चे को याद करो, उन बच्चों की पालना करो और इस बच्चे को याद करो, है ना? कितना सुंदर होमवर्क है, राइट? इसको याद करोगे तो माला माल भी कर देगा और लाल भी कर देगा। कितना प्यारा होमवर्क है। तो उनकी पालना करो और इस वारिस बच्चे को याद करो, सुंदर होमवर्क हो जाता है। तो रोज की मुरली से एक हम होमवर्क लें। बारवां धाम हमारा लौकिक घर, ये भी बाबा का धाम है, तीर्थ है। क्योंकि रोज हम बाबा का अपने घर में भी आह्वान करते हैं। अपने घर को हमें तीर्थ बना लेना है, अपने घर को भी सेंटर बना लेना है, अपने घर को धाम बना लेना है। और जिस घर में बाबा आते हैं वो घर तो धाम ही हो जाएगा ना। तो देखें, अपने घर में बाबा के सुंदर, ब्रह्मा बाबा के सुंदर फोटो, बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, ऐसा आप एक सुंदर सा विजन बनाओ कि बाबा के सुंदर बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं हमारे घर में। डाइनिंग हॉल में भी लगा हुआ है, बेडरूम में भी लगा हुआ है। और बाबा की बारहवीं मुरली याद करें। बाबा ने बारहवीं मुरली में कहा, बाप उलाहना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे, कब तक बाप समान बनेंगे। ये बाबा ने कहा, जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप, जो संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। तो संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा संबंध सब में बाप समान। तो देखो, अपने धाम में, अपने घर में, लौकिक में रहते हुए मुझे बाबा के समान बनना है। देखें, बाबा के बड़े बड़े फोटो घर में लगे हुए हैं, और जैसे बाबा मुझे बाप समान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, संकल्प ले लें, एक संकल्प केवल। बाबा होते तो क्या करते, कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे कर्म करते। तो बाबा जैसा कर्म मुझे करना है, क्योंकि मुझे बाबा के समान बनना है। तो दिन में कई बार, इस बारहवें धाम में अर्थात अपने घर में ही रहते हुए ये देख लें बाबा होते तो इस समय कैसे सोचते, कैसे बोलते और कैसे कर्म करते। ठीक है, तो अभी से इस सुंदर संकल्प को अपने पास रखिएगा, बाबा होते तो कैसे चलते, बाबा होते तो योग में कैसे बैठते, बाबा होते तो कैसे दूसरों को देखते, बाबा होते तो कैसे दूसरे से बोलते, बाबा मेरी जगह होते तो क्या करते, कैसे अमृत वेला बैठते यहां आकर के, कैसे भोजन में भी बैठते तो कैसे भोजन योग युक्त होकर के करते, कमरे में भी रहते तो बाबा कैसे रहते। बाबा होते तो एक सूत्र वाक्य बना ले अपने लिए, बाबा होते तो कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे करते। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद इसी को योग में सुंदर हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला धाम, पहला धाम डायमंड हॉल देही अभिमाने स्थिति, दूसरा हमारा धाम प्रकाश स्तंभ पवित्रता की संपूर्ण धारणा, तीसरा हमारा धाम शक्ति स्तंभ क्या करना है, खुश रहना है, खुशी बांटनी है, चौथा धाम अव्यक्त लोक क्या करेंगे, टर्न इन रिटर्न, हाँ रिटर्न में हमें टर्न होना है, अपनी कमी कमजोरियों को देना है, पांचवा धाम ज्ञान सरोवर, राइट हार्मनी हॉल कह लें ज्ञान सरोवर क्या करेंगे, बंधन मुक्त फरिश्ता, छठवां धाम ओम शांति भवन क्या करेंगे, स्वमान की माला पहन के रखेंगे, याद करेंगे मैं कौन, सातवां धाम हिस्ट्री हॉल क्या करेंगे, मन जीत जगत जीत, आठवां धाम बाबा की कुटिया क्या करेंगे, अलौकिक ड्रिल करेंगे जो भी ड्रिल बाबा ने दिए हुए हैं। ठीक है, नौवां धाम बाबा का कमरा, बाबा ने क्या गिफ्ट दिया, तीव्र पुरुषार्थ की रॉकेट दी कि तीव्र पुरुषार्थ ही बनो, दसवां धाम शांति स्तंभ क्या करेंगे, फुल स्टॉप, ग्यारहवां धाम बाबा का सेंटर क्या करेंगे, रोज की मुरली उस धाम में जाकर सुनेंगे, रोज की मुरली होमवर्क, बारहवां धाम हमारा घर, और क्या करेंगे वहां, बाबा को फॉलो करेंगे संकल्प में, बोल में, कर्म में। ठीक है, तो ये अरमान बाबा के हमें पूरे करने हैं, कौन कौन करेगा, वेरी गुड, दिल से बहुत बहुत आप सबको शुक्रिया जो इस संकल्प को लेकर चल रहे हैं कि बाबा ने हमारे अरमान पूरे किए, अब हमें भी बाबा के अरमान पूरे करने हैं। चलें तो दिल से संकल्प करते हुए, इन 12 धामों की यात्रा करते हुए बाबा से संकल्प करेंगे कि बाबा अब हम आपके जैसा बने की बने।